ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम महापुराण स्कंद 5 अध्याय 25 श्लोक संख्या 4 और 5। और ये दोनों श्लोक जो हैं वो प्रोज फॉर्म में है, इसीलिए इसको गाया नहीं जा पाएगा। तो 4 का अनुवाद नहीं है, उसको मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में 5 को हम विस्तार से करेंगे। यस्य अंगणी कमल युगला अरुण विशद नखा मणिषंड मंडलेशु अहि पतया सह सात्वता ऋषभ है एकांत भक्ति योगेन अवनमंता स्वबदनानी परिस्फुरता कुंडला प्रभा मंडिता गंड स्थलानी अति मनोहराणी प्रमुदित मनसा खलु विलोकयंती। इसका अनुवाद इस प्रकार है, भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गुलाबी तथा पारदर्शी नाखून मानो दर्पण जैसे चमकाए गए बहुमूल्य मणि हैं। जब शुद्ध भक्त तथा नागों के अधिपति अत्यंत भक्ति भाव से उन्हें नमस्कार करते हैं तो उनके चरण नखों में अपने सुंदर मुखों की छाया देखकर अत्यंत प्रमुदित हो उठते हैं। उनके गालों पर कान की देदीप्यमान बालियां दमकती हैं और उनकी मुख कांति अत्यंत मोहक होती है। तो भगवान अनंत की महिमा के उसमें ये श्लोक है, भगवान संकर्षण के जो है रूप का वर्णन किया जा रहा है। और 5वां श्लोक जो है तो इसका आप हमारे पीछे शब्दार्थ दोहरा लीजिए। यस्य एव हि नागराज कुमार्यः आशीष आशसाना चारु अंगवलया विलसिता विशद विपुल धवल सुभग रुचिर भुज रजत स्तंभेशु अगरु चंदना कुंकुमा पंख अनुलेपना अविलिम्पाना तद अभिमर्शना उन्मथिता हृदया मकर ध्वजा आवेश रुचिर ललिता स्मिता तत् अनुराग मद मुद्दिता मद विघूर्णिता अरुणा करुणा अवलोका नयना वदना अरविंदम सव्रीड्रम किला विलोकयंती। यस्य एव हि नागराज कुमार्या आशीष आशसाना चारुर उंगवलया विलसित विशदा विपुल धवल सुभग चुचिर भुजा रजत स्तंभेशु अगरु चंदना कुंकुमा पंका अनुलेपना अविलंपपाना तत् अभिमर्शना। उन मथिता हृदया मकर ध्वजा आवेश रुचिरा ललिता स्मिता तत् अनुरागा मद मुदिता मद विघूर्णिता अरुण करुण अवलोका नयन वदन अरविंदम सव्रीडम किल विलोकयंती। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा, शिल प्रभुपाद के भगवान अनंत की आकर्षक दीर्घ भुजाएं कंगनों से आकर्षक ढंग से अलंकृत हैं और पूर्णतया आध्यात्मिक हैं। श्वेत होने के कारण वे चांदी के खंभों से प्रतीत होती हैं। जब भगवान के शुभाशीर्वाद की इच्छुक नागराजों की कुमारियां उनकी बाहों में अगुरु चंदन तथा कुमकुम का लेप लगाती हैं तो उनके स्पर्श से उनके भीतर काम इच्छा जागृत हो उठती है। उनके मनोभावों को समझकर भगवान जब इन राजकुमारियों को कृपापूर्ण मुस्कान से देखते हैं तो वे यह सोचकर लजा जाती हैं कि वे उनके मनोभावों को जानते हैं। तब वे मनोहर मुस्कान सहित भगवान के मुख कमल को देखती हैं जो उनके भक्तों के प्यार से प्रमुदित तथा मद विहल घूमती हुई लाल लाल आंखों से सुशोभित रहता है। तात्पर्य, जब स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे के शरीर का स्पर्श करते हैं तो सहज ही उनके मन में काम भावना जागृत होती है। इस श्लोक से ऐसा सूचित होता है कि अलौकिक देहों में भी ऐसी ही अनुभूति होती है। भगवान अनंत तथा उन्हें सुख देने वाली नारियों दोनों ही के शरीर अलौकिक थे। इस प्रकार सभी अनुभूतियां मूलतः अलौकिक देह में विद्यमान रहती हैं। वेदांत सूत्र से इसकी पुष्टि होती है जन्मादि अस्य यतः। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का इस संबंध में टीका है कि आदि शब्द का अर्थ है आदि रस, जिसका उद्भव परमेश्वर से होता है, किंतु आध्यात्मिक काम तथा प्राकृतिक काम में वैसा ही अंतर है जैसा कि सोने तथा लोहे में। जो आत्म साक्षात्कार में जितना ही अधिक सिद्ध होगा वह राधा एवं कृष्ण अथवा कृष्ण एवं ब्रज की बालाओं के मध्य की काम भावनाओं को समझ सकता है। इसलिए जब तक कोई अति अनुभवी तथा आत्म सिद्ध न हो उसे कृष्ण और गोपियों के काम भावनाओं की चर्चा करने के लिए निषेध किया जाता है, किंतु यदि कोई शुद्ध एवं निष्ठावान भक्त हो तो गोपी एवं कृष्ण की काम अनुभूतियों की चर्चा करते समय उसका हृदय पूर्णतः काम रहित होता है और वह आध्यात्मिक जीवन में तेजी से उन्नति करता है। तो यहां श्रील प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठम स्थापित येन भूतले स्वयं रूपा कदामियम ददाति स्वपदांतिकम वंदेयम श्री गुरु श्री उत्पत्कमलम श्री गुरुन् वैष्णवाक्ष श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथवितम तम सजीव सावदेतम सावदूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नमिताक्ष नमोम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश दारिणे श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य छठ ठाकुर की जय। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नमो महावदन्ये कृष्णो प्रेमपदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। वंशकल्पतरुभिः च कृपा सिन्धुभिः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तावृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत् कृपा तमं वंदे परमानंद माधवम श्री गुरु दीन तारणम। जय श्रील प्रभुपाद की। उसी वृंदावन धाम में कृष्ण बलराम मंदिर की तरफ से श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में हम सब वैष्णव वैष्णवी माता इसका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आपसे कृपा याचना करते हैं कि आप सभी वैष्णव जन इस तुच्छ जीव को शक्ति प्रदान करें कि हम अनंत भगवान की अनंत महिमाओं में से कुछ का गुणगान कर सकें, जो कि हमारी सीमा से बाहर की बात है, हमारी सीमा में नहीं। भगवान अनंत की अनंत महिमाएं कैसे गाई जा सकती हैं जब स्वयं अनंत शेष ही नहीं पूर्ण रूप से अभी तक गा पाए हैं, तो हम कैसे गा सकते हैं। तो शीर्षक है भगवान अनंत की महिमा। तो भगवान अनंत कौन है? भगवान अनंत संकर्षण है। और भगवान अनंत कौन है? बलराम जी हैं। और भगवान अनंत कौन है? दाऊ जी हैं। दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। तो इन दो श्लोकों में भगवान के एक तो रूप का सौंदर्य का वर्णन किया गया है और दूसरा भगवान का जो सेवा कर रहे हैं, जो नाग राज की जो कुमारियां हैं अविवाहित, जो उनकी कुमारियां हैं उनके बाहों में अगरू चंदन कुमकुम का लेप लगाती हैं, तो उनके स्पर्श से उनके भीतर कामेच्छा जागृत हो उठती है और उसके मनोभाव को भगवान अनंत समझ जाते हैं और कृपापूर्ण मुस्कान से देखते हैं और ये सोचकर वो लजा जाती हैं और उनके मनोभाव को जानते हैं, तब वे मनोहर मुस्कान सहित भगवान के मुख कमल को देखती हैं जो उनके भक्तों के प्यार से प्रमुदित तथा मद विहल घूमती हुई लाल आंखों से सुशोभित होता रहता है। तो शिला प्रभुपाद इसके तात्पर्य में शुरुआत में ही लिखते हैं कि जब स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे के शरीर का स्पर्श करते हैं तो सहज ही उनके मन में काम भावना जागृत होती है। और लेकिन जब हम भक्ति के उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं तब भगवान की इन्हीं लीलाओं का श्रवण करने से हमारी काम वासना समाप्त हो जाती है। ये बड़ी अद्भुत बात है। भगवान की इन्हीं लीलाओं को सुनने मात्र से हमारी काम वासना समाप्त हो जाती है। तो अभी इस श्लोक पे चर्चा करने से पूर्व हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि भगवान अनंत जो हैं वो क्या हैं, भगवान अनंत को किस रूप में हमको समझना चाहिए। तो जो भगवान अनंत पाताल में हैं, पाताल लोक में, इससे पिछले वाले अध्याय में जो स्वर्गीय लोक, नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन किया गया है, उसी में सबसे नीचे का लोक है पाताल लोक। और पाताल लोक में भगवान जो हैं अनंत जो हैं के रूप में विराजमान हैं। तो वही भगवान जो पाताल लोक में हैं उसी का वर्णन करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने भगवान अनंत की महिमा के ऊपर पूरा अध्याय जो है अलग से इसमें हमें सुनाया है। तो जो भगवान अनंत पाताल में है वही गोलोक में भी है। तो गोलोक, पाताल जो है सबसे नीचे का लोक है और गोलोक सबसे ऊपर का, गोलोक सर्वोपरि लोक है। और गोलोक में तीन श्रेणियां हैं, एक गोकुल, एक मथुरा और एक द्वारकापुरी। और एक हिस्से में गोलोक के ही नवद्वीप मायापुर भी है, गौरांग महाप्रभु का धाम नवद्वीप मायापुर भी है और कृष्ण का धाम जो है ये है। तो गोलोक वृंदावन में, गोकुल वृंदावन जो है उसमें एक स्थान है जिसे रासमंडल कहते हैं। रासमंडल में एक तरफ एक पर्वत है जिसे सटाश्रृंगा पर्वत कहते हैं। सटाश्रृंगा पर्वत जो है जो गोलोक में है वही भौम वृंदावन में गोवर्धन पर्वत है। गोलोक वृंदावन में मालती के बाग में और मल्लिकाओं के पुष्पों से सुसज्जित बाग में यहां पर भगवान बैठे हैं। द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स अकेले बैठे हैं और भगवान के मन में जैसे ही इच्छा उत्पन्न होती है एंजॉयमेंट करने की, वैसे ही उसी क्षण उनके वाम अंग से एक बड़ी सुंदर देवी प्रकट होती है। इतनी सुंदर देवी है कि लाखों चंद्रमाओं से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। क्या उन्होंने अलंकार पहने हुए थे, क्या उनके वस्त्र थे। तो वो देवी भगवान के वाम अंग से प्रकट होती हैं और दाएं अंग से जो है वो एक बड़ा सुंदर आकर्षक पुरुष भी प्रकट होता है। समझ लीजिए वो पुरुष ही अपना रूप बना लेता है। तो जैसे ही वो देवी देखती है उस सर्व आकर्षक पुरुष को तो तुरंत भागती है मालती के पुष्प लेने के लिए और श्री हरि के चरणों में पुष्प अर्पण कर देती है। तो चूंकि वो रासमंडल में उसका प्रकट्य हुआ तो इसीलिए उसका दो अक्षर जो है रा, और भागती है धावंती तो दौड़ती है पुष्प लेने के लिए तो वो धा, तो वो राधा का प्रकट्य हो गया वाम अंग से। और जब भगवान कृष्ण और राधा ये दोनों एक ही हैं, श्री राधा और कृष्ण जो हैं वो अलग नहीं हैं। अब राधा और कृष्ण से क्या होता है, राधा कृष्ण जो हैं वो रस स्वरूप हैं, रस राज हैं, भगवान रसों के बने हुए हैं। अब जब वो रस रसास्वादन करना चाहते हैं तो वो एक अकेले रसास्वादन नहीं कर सकते, इसीलिए उनको एक से अनेक होना पड़ता है। तो इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम अपने वाम अंग से राधा रानी को प्रकट किया। और रसवादन अकेले नहीं किया जा सकता, एकाकी सा न रमते, उसके लिए आपको एक से अधिक होना होगा। तो कृष्णा जो है अनेक अनेक भगवत स्वरूपों में प्रकट होते हैं, अनेक स्वरूपों में भगवत स्वरूपों में प्रकट होते हैं। और राधा जो है वो भी कांता शक्ति रूपा में प्रकट होती हैं। तो इस प्रकार से भगवान के जो है स्व अंश भी हैं और विभिन्न अंश भी हैं। तो अब भगवान अपने दाहिने भाग से अपने प्रथम अवतार बलराम को, शंकर सिंह जी को प्रकट करते हैं। तो बलराम जी और कृष्ण में क्या अंतर है? जैसे कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है, दीर्पा चिरे वही दशानंतर मुपेत्या दीपा हेते विवृथे तु समान धर्मा यस्ताद ग्रेव हिच विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आज जरा गला हमारा ठीक नहीं है, तो थोड़ा बोलने में आपको थोड़ा सुनाई ठीक से नहीं भी देता होगा। तो यहां बताया गया है कि जैसे एक दीपक की लौ दूसरे दीपक में पहुंचकर यद्यपि दोनों दीपकों में पृथक पृथक रूप से जलती है, पहले दीपक से दूसरा दीपक जलाएं तो दोनों में पृथक पृथक लौ जलती है, परंतु गुण में एक समान होते हैं, उसी प्रकार जो स्वयं को विभिन्न प्रकाशों में समान रूप से प्रदर्शित करते हैं उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं। और आगे कहते हैं, यह कारण अणव जले भजति स्म योग निद्राम अनंत जगदंड सरोम कोप आधार शक्ति आधार शक्तिम अवलंब्य पराम समूर्ति गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। जो अपनी आधार शक्ति स्वरूप अनंत शेष नामक श्रेष्ठ मूर्ति का अवलंबन करके अपने रोम कूपों में अनंत ब्रह्मांडों को समाये हुए योग निद्रा का आनंद लेते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो यहां ब्रह्मा जी ने ये गायन किया है। और कृष्ण और बलराम में बताया गया है कि अंतर जो है केवल वर्ण का अंतर है, कृष्ण जो है श्याम वर्ण है और बलराम गौर वर्ण है। कृष्ण यदि 100% भगवान हैं तो बलराम 98% भगवान है, केवल 2% का अंतर हम अपनी बुद्धि से मान सकते हैं, वैसे वस्तुतः कोई अंतर नहीं है। एक सेव्य भगवान है और एक सेवक भगवान है। भगवान कृष्ण सेव्य भगवान है सेवा करवाने के लिए, और बलराम सेवा करने के लिए है। सर्व अवतारी कृष्णा स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। तो बताया गया है कि सर्व अवतारी कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, ताहार द्वितीय देह उनकी जो दूसरी देह है वो है श्री बलराम। श्री कृष्ण नव द्वीपे श्री चैतन्य चंद्रा श्री बलराम संगे श्री नित्यानंदा। और यही कृष्ण नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु हैं और बलराम जो हैं वो नित्यानंद बन जाते हैं। तो बलराम जो अब श्री भगवान के प्रथम विस्तार हैं, वो अपना विस्तार 5 रूपों में करते हैं, महासंकर्षण, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु और अनंत शेष। और इसमें जो बलराम है वो भगवान के नित्य प्रति कार्यकलापों में भगवान के साथ ही रहते हैं। जब भगवान की भौम वृंदावन लीला होती है तो बलराम प्रतिदिन उनके साथ ही रहते हैं, और जब जब बलराम जी उनके साथ नहीं रहते तो भगवान कष्ट में आ जाते हैं, कठिनाई में आ जाते हैं। तो जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई, ब्रह्मा जी ने जब बछड़ों को चुराया, उस वक्त ब्रह्मा बलराम जी जो है साथ में नहीं थे। और जब भगवान ने कालिया दमन किया उस वक्त भी बलराम जी साथ में नहीं थे। तो इस प्रकार से कृष्ण जो हैं, बलराम जी उनके जो है प्रथम जो है फर्स्ट एक्सपेंशन है। अब बलराम जी ने यहां पर आकर के भी कुछ असुरों का वध किया, जिसमें धेनु का सुर का वध किया भगवान बलराम ने। धेनुकासुर जो है जब कृष्ण और बलराम अपनी कौमार्य अवस्था से पौंगाण अवस्था में पहुंचे, 5 वर्ष से पूरे हो गए, तो उन्होंने कहा कि अब गैयों को जो है आगे चराने के लिए ले जाना है बछड़ों को छोड़ करके। और वो इस तरीके से जब वो गैयों को चराने ले जा रहे थे तो सखाओं ने कहा कि भाई यहाँ पास में ही एक तालवन है, उस तालवन में बड़े मीठे मीठे रसीले फल हैं, तो कृष्णा कन्हैया बलराम दाऊ जी हमें वहाँ ले चलो, हमें वहाँ के फल चखवाओ। लेकिन वहाँ का जो राजा है, वहाँ का जो वन का राजा है, वो धेनुकासुर है, एक असुर है जो गधे के रूप में है। तो कृष्ण और बलराम जो है वहाँ जाते हैं और उनको फल खिलाते हैं, और धेनुकासुर उसका बलराम जी के हाथों जो है वध होता है। और फिर जितने भी उनके साथी आते हैं उन दोनों का भी, उन सभी का भी वध होता है कृष्ण और बलराम के द्वारा। तो धेनुकासुर का वध किया बलराम जी ने, तो कभी भगवान ने परिहास में कहा था यशोदा मैया को, देखो आपके सुपुत्र ने आज असुर को मारा है, लेकिन मारा किसको, एक गधे को मार के आए हैं। तो एक परिहास में बात किया था। तो उसके बाद में भगवान अनंत ने, बलराम जी ने प्रलम्बासुर का भी वध किया। तो प्रलम्बासुर का भी, एक प्रलम्बासुर नाम का राक्षस कृष्ण की टोली में आ गया था, और ये तय हुआ था कि जो भी हारेगा खेल में वो अपनी पीठ पे जो है दूसरों को बिठाएगा। तो इस तरीके से बलराम उस खेल में जीते थे और प्रलम्बासुर जो है कृष्ण की टोली में था, और प्रलम्बासुर बलराम को अपनी पीठ पे बिठा करके और बहुत दूर ले गया। और फिर भगवान ने धीरे धीरे अपने वजन को बढ़ाया और अंततः उसका दम निकल गया। इस प्रकार से भगवान ने, अनंत ने अपनी कुछ लीलाओं का प्रदर्शन किया यहाँ असुरों का वध करके। अब मुख्य बात ये आती है कि भगवान जो अनंत हैं वो जब उनका नाग कन्याओं के द्वारा उनके अंगों पे, उनके भुजाओं पे चंदन का लेपन हो रहा है, तो उससे उनकी जो है काम वासना जागृत हो गई। लेकिन इस बात को हमें सामान्य रूप से नहीं लेना चाहिए। देखिए भगवान जो श्री कृष्ण हैं और जो भगवान बलराम हैं, उनको काम वासना छू नहीं सकती। लेकिन हमारी जो स्थिति है, हम भगवान के कभी कभी उस रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। जैसे भगवान शिव भी भगवान के मोहिनी अवतार को देख करके मोहित हो गए। तो भगवान का जो शरीर है उसमें लिंग भेद नहीं होता। भगवान का शरीर और भगवान का आत्मा एक ही तत्व का बना होता है, इसीलिए वो सच्चिदानंद कहलाते हैं। हमारी बुद्धि जो है देहात्म बुद्धि से हम ये सोचते हैं कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। भगवान की बुद्धि जो है, भगवान में लिंग भेद नहीं करते। भगवान पूर्ण रूप से सच्चिदानंद हैं और आत्मा के ही स्वरूप को देखते हैं। उस शरीर को देख करके भगवान उसमें लिप्त नहीं होते हैं। तो जिस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हमारी उन्नत अवस्था होगी, तो हम इस बात को भलीभांति से समझ सकते हैं। अन्यथा हमारा समझना जो है थोड़ा मुश्किल रहता है और हम भगवान की लीलाओं को सामान्य रूप से देखने लगते हैं। जब भगवान द्वारका में थे तो बलराम जी ने वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट की थी, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। और वो चैत्र और शुक्ल मास में, दो मासों में बलराम जी यहाँ वृंदावन वापस आए थे द्वारका से। और यहाँ आकर के उन्होंने गोपियों से, नंद बाबा से, यशोदा से सबसे मिले थे और गोपियों को सांत्वना दी थी और उनको कृष्ण के ना आने के बारे में बहुत कुछ बताया था, बहुत वार्तालाप हुआ था। अंततः बलराम ने वहाँ दो मास तक रास रचाया था, बलराम जी ने। और वो यमुना जी के तट पे गए थे और उस वक़्त उन्होंने जो है एक जो है वो वारुणी जो एक क्या कहेंगे उसको, वारुणी जो एक मोहक रस है उसका पान किया था और जिससे उनकी जो आंखें हैं काफ़ी लाल हो गई थी। उन्होंने जमुना जी को पुकारा, जमुना जी घबरा गई देख करके, ये तो मदहोश हैं बलराम जी, इन्होंने वारुणी का पान कर रखा है, तो उन्होंने आने से मना कर दिया। तो फिर बलराम जी के पास भी अस्त्र शस्त्र रहते हैं, क्या क्या अस्त्र शस्त्र हैं उनके, गदा और हल। तो उन्होंने फिर हल से जमुना मैया को खींचा था अपनी तरफ और कहा था कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं आपको कई शाखाओं में विभक्त कर दूंगा। तो इस तरीके से जो है फिर जमुना जी ने आकर के क्षमा भी मांगी थी और बलराम जी ने वहाँ पर गोपियों के साथ रास रचाया था। लेकिन यहाँ ये बात समझने की है कि बलराम जी की गोपियाँ और कृष्ण की गोपियाँ अलग अलग हैं। जो कृष्ण की गोपियाँ हैं वो बलराम की गोपियाँ नहीं हैं। जो गोपियाँ कृष्ण की रासलीला में आने से वंचित रह गई थी, उन गोपियों के साथ भगवान बलराम ने रास रचाया। तो भगवान की जब रासलीला है तो जो जो अपना श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि इस रासलीलाओं पे एकदम से हमको नहीं पहुंचना चाहिए। जब हम भागवतम के 9 स्कंदों का अच्छे से चिंतन मनन कर लें तब हमको उसमें जाना चाहिए, जब हमारी उन्नत अवस्था हो जाती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद के उसी बात को हमें समझते हुए ये देखना चाहिए कि बलराम जी जो है वो कृष्ण से अभिन्न हैं और बलराम जी भी जो है 2 महीने तक उन्होंने यहाँ पर रासलीला का वो किया था। और जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे, अक्रूर जी उनको लेने आए थे, तो मथुरा में उनको एक कुबड़ी मिली थी कृष्ण को, कुब्जा। और उस कुब्जा को देख करके भगवान ने व्यंग किया था कि इतनी इतनी सुंदर, हे सुंदरी तुम कहाँ से आ रही हो। तो वो मैं थोड़ा सा आपको वृतांत कृष्णा बुक में से पढ़ के सुना रहा हूँ, तो उससे हमें और स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो काम वासना है ये किस प्रकार से दूर हो जाती है। सुनिए, समय है हमारे पास थोड़ा। माली के गृह से प्रस्थान करने पर श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने एक कुबड़ी युवती कुब्जा को देखा। वह हाथ में चंदन के लेप का एक पात्र लेकर गली से जा रही थी। समस्त सुखों के सागर श्री कृष्ण उस कुब्जा से विनोद करके अपने सभी सहयोगियों को हर्षित करना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उसे संबोधित किया, हे तनवंगी, तुम कौन हो? तुम अपने हाथ में यह चंदन का लेप किसके लिए लेके जा रही हो? मेरा विचार है कि यह चंदन मुझे अर्पित कर दो। यदि तुम ऐसा करोगी तो निश्चय ही अति सौभाग्यशालिनी बनोगी। श्री कृष्ण भगवान हैं और वे कुब्जा के विषय में सब कुछ जानते थे। अपने इस प्रश्न से उन्होंने यह इंगित किया कि एक असुर की सेवा करने में कोई लाभ नहीं है, उत्तम यही है कि वह श्री कृष्ण एवं बलराम जी को यह चंदन अर्पित कर दें। और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण और बलराम जी की सेवा करने से आपको तत्काल फल मिलेगा। युवती ने श्री कृष्ण को उत्तर दिया, प्रिय श्याम सुंदर, हे कन्हैया, संभवतः आपको पता होगा कि मैं कंस के यहां दासी का कार्य करती हूं। मैं प्रतिदिन उनके लिए चंदन का लेप ले जाती हूं। इस उत्तम वस्तु को उसे देने के कारण राजा मुझसे अति प्रसन्न है, किंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप दोनों भाइयों से श्रेष्ठ और कोई नहीं है जिसे यह चंदन का लेप अर्पित किया जा सके। श्री कृष्ण बलराम जी के मनोहारी मुख, उनके वार्तालाप, उनके मंद हास तथा उनकी चितवन आदि पर मुग्ध होकर कुब्जा संतुष्टि एवं भक्ति से उनके शरीर पर चंदन का लेप करने लगी। दोनों दिव्य भ्राता श्री कृष्ण और बलराम नैसर्गिक रूप से अति सुंदर थे। उनका वर्ण अत्यंत मनोहारी था और उन्होंने उत्तम रंगीन वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके शरीर पहले से ही अत्यंत आकर्षक थे और कुब्जा ने उनके शरीर पर चंदन का लेप कर दिया तो वे और अधिक सुंदर दिखने लगे। श्री कृष्ण इस सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हो गए और सोचने लगे कि उसे क्या पारितोषिक दिया जाए। दूसरे शब्दों में, भगवान को आकर्षित करने के लिए कृष्णा भावना भावित भक्त को प्रेमा भक्ति में उनकी सेवा करनी पड़ती है। उनके प्रति दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का और कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए श्री कृष्ण ने कुब्जा के पैरों पर अपना पैर रखकर उसे दबा दिया तथा उसके गालों को अपने हाथों से पकड़कर उसे सीधा करने के लिए एक झटका दिया। तत्काल ही कुब्जा विस्तृत नितंबों, क्षीण कटी तथा सुंदर एवं सुपुष्ट स्तनों वाली एक सीधे शरीर वाली युवती बन गई। चूंकि श्री कृष्ण कुब्जा की सेवा से प्रसन्न थे और उसे श्री कृष्ण के करकमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ था, अतः वह नारियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी बन गई। यह घटना दर्शाती है कि श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा भक्तों को तत्काल सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त हो सकती है। प्रत्येक दृष्टि से भक्त में इतनी शक्ति है कि जो कोई भक्ति करता है वह सभी देवी गुणों से युक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कुब्जा की ओर उसके सौंदर्य के कारण नहीं अपितु उसकी सेवा के कारण आकर्षित हुए थे। जैसे ही उसने भगवान की सेवा की वह उत्तम सुंदरी बन गई। कृष्ण भावना भावित भक्त को सुंदर अथवा गुणगान होना आवश्यक नहीं है। चिला प्रभुपाद कहते हैं, कृष्णा भावना भावित भक्त को सुंदर अथवा गुणवान होना आवश्यक नहीं है। कृष्णा भावना वृत्त में संलग्न होने तथा कृष्ण की सेवा करने के उपरांत वह अत्यंत गुणवान तथा सुंदर हो जाता है। जब कुब्जा श्री कृष्ण के अनुग्रह से अनुपम सुंदरी युवती बन गई तो तो वह स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत आभार मानने लगी। वह उनके सौंदर्य से आकर्षित भी हो गई। वह बिना हिचक के श्री कृष्ण के वस्त्र का पिछला छोर पकड़कर खींचने लगी। उसने भाव भंगिम पूर्ण मुस्कान की और स्वीकार किया कि वह काम वासना से पीड़ित है। कुब्जा ने स्वीकार किया कि मैं काम वासना से पीड़ित हूं। उससे यह भी विस्मित हो गया कि श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता तथा सखाओं के सम्मुख वह गली में खड़ी है। उसने श्री कृष्ण के सम्मुख प्रस्ताव रखा कि मेरे प्रिय हे वीर, मैं आपको नहीं छोड़ सकती, आपको मेरे घर चलना होगा, मैं आपके सौंदर्य से के प्रति अत्यंत आकर्षित हूं, अतः भली भांति आपका स्वागत करना चाहती हूं। अगर आप पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप भी मुझ पर दयालु हो जाइए। स्पष्ट शब्दों में उसने अपनी काम वासना तृप्त करने के लिए श्री कृष्ण से अपने घर चलने का प्रस्ताव किया। अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम की उपस्थिति में उसके इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण किंचित संकोच में पड़ गए। उन्हें ज्ञात था कि वह युक्ति अत्यंत सरल स्वभाव की थी तथा उनके प्रति अत्यंत आकर्षित थी, अतः उसके शब्द सुनकर श्री कृष्ण केवल मुस्कुरा दिए और अपने ग्वाल वालों सखाओं की ओर दृष्टि करके उन्होंने उसे उत्तर दिया, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे निमंत्रण से अत्यंत प्रसन्न हूं और यहां के अन्य कार्य समाप्त करके मैं अवश्य ही तुम्हारे घर आऊंगा। और इस बात पे कई दफा भक्त पूछते हैं कि कृष्ण कुब्जा के घर गए थे तब क्या हुआ, क्या हुआ तब? ये बड़ी जिज्ञासा कईयों के मन में रहती है। तो जब कृष्ण कुब्जा के घर में गए थे तो कृष्ण ने अपने पाद कमल चरणों को उनके स्तनों पर रखा और उनकी सारी की सारी काम वासना प्रेम में परिवर्तित हो गई। काम प्रेह दोहंकार विभिन्न लक्षण लोह आरा हेम यछे स्वरूप लक्षण। जब कृष्ण के संपर्क में कोई भी जीव आता है तो वो जो उसका स्वरूप है लोहे का स्वरूप है वो क्या हो जाता है, स्वर्ण के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे तारे नाम। तो जब हम अपनी इंद्रियों को संतुष्टि करते हैं, संतुष्ट करने के लिए संसार में भोग वासना में लिप्त रहते हैं, उसको काम वासना कहते हैं। जब हम कृष्ण के संपर्क में आते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, तो यही काम जो है हमारा प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए कृष्ण के संपर्क में, बलराम जी के संपर्क में, भगवान के संपर्क में और संतों के संपर्क में, वैष्णव के संपर्क में जब भी कोई जीव आता है तो उसकी काम वासना समाप्त हो जाती है। तो हम यहीं इसी वाणी को समाप्त करते हैं। श्रीमद् भागवतम हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम महापुराण की शिला प्रभुपाद की इतई गौर प्रेमानंदी।